देवियों, सुधीजनों, आप सबको नमस्ते। गीता के 13वें अध्याय में आज ये 12वीं श्रृंखला है, 12th पार्ट है। मेरे साथ बोलिए मिलके, येयम् यत्तत्र वक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत् परम ब्रह्म न सत्तन्ना सदुच्यते येयम् यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत् परम ब्रह्म न सत्तन्ना सदुच्यते। कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि मैं तुम्हें वो बताऊंगा जो ज्ञेय है, जो जानने लायक है, जिसको जानने के बाद तुम अमृत को पी पाओगे, मतलब तुम अमर हो सकते हो। और वो जो जानने लायक चीज है वो अनादि है, बिगिनिंगलेस है, अनादि मत है, परम ब्रह्म है, तो सुप्रीम बीइंग है, वो न सत है, इट डजंट एग्जिस्ट, न असत, वो भी नहीं है कि वो इट डजंट नॉट एग्जिस्ट, वो सत और असत से परे है। जानने की योग्य तो हमारे लिए बहुत सारी चीजें हैं, पड़ोस में कौन अगर लड़ाई की आवाज आए तो भी वो सुनने लायक होता है, दूसरों के घर में क्या खिचड़ी पकती है वो जानना भी सबसे बढ़िया सुनने लायक चीज होता है, जानने लायक चीज होता है। तो हमारे लिए जानने लायक चीज तो बहुत कुछ होता है। रास्ते में 10 लोग इकट्ठा हो जाए और आप गाड़ी चलाएं, शोर मचे, तो भी वो देखने लायक, जानने लायक होता है। जिंदगी भर में हम जितने चीज जानते हैं या जानने की कोशिश करते हैं या जानने हमें लगता है कि ये जानना चाहिए, उसमें 90% से ज्यादा चीजें हमारे लाइफ में यूजलेस होते हैं। मतलब हम अपने लाइफ के बहुत बड़ी हिस्सा यूजलेसली बेकार कर देते हैं चीज, ऐसी चीजों को जान के, जिसको जानने से ना मुझे फायदा, ना सोसाइटी को फायदा, ना किसी को फायदा, और उसी को हम ज्ञान समझते हैं। हमारे बहुत सारे मित्र हैं यहां आए हैं होंगे, जिनको पॉलिटिकल लीडर्स के एक एक गतिविधि को समझने के लिए रात रात भर बैठते हैं, नींद नहीं आती है, उनकी पत्नियां मेरे से शिकायत करती हैं कि देखो वो भारत में क्या होता है, इनको नींद नहीं आती है, न्यूज में अगर पुराना पड़ जाता है तो वो इंटरनेट से सर्च कर कर करके ढूंढते रहते हैं। अब क्या है, इतनी सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठा हो जाती है तो क्या करें, पकड़ पकड़ के फिर दूसरों को सुनाते हैं, आपके इंटरेस्ट हो ना हो, यूजलेस से, आपके इस इंफॉर्मेशन से ना उसको फायदा है, ना आपको फायदा, ना किसी को फायदा है। अगर कुछ इंप्लीमेंट कर सकते हैं तो चलो थोड़ी बहुत किसी को फायदा हो जाए। तो जानने लायक क्या है ये भी व्यक्ति को पता होना चाहिए। शुरू शुरू में जब हम भी छोटे थे तो जानने की बड़ी इच्छा होती, तो कहीं कुछ भी अखबार की एक पुरानी कटिंग जिसमें समोसा आती थी उसको फेंककर भी हम पढ़ते थे क्या लिखा है, लगता था कि इससे हम अपनी नॉलेज बढ़ा रहे हैं। लाइब्रेरी में जाते थे तो पढ़ने की शौक है तो कोई भी बुक उठा के पढ़ते थे, सोचे मुझे उसके बारे में भी पता चला, उसके बारे में भी पता चला, वो सब पता चलना भी बड़ा बकवास था, टाइम वेस्ट के अलावा कुछ था ही नहीं है। अगर उसको छोड़ के हमें किसी खास पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर जोर देते तो शायद उससे हमें और कुछ लाभ होता। ध्यान दीजिएगा, जिन हमारे लाइफ में बहुत सारी चीजें हम जानने की कोशिश करते हैं, जानते रहते हैं या सोचते हैं कि ये जानना चाहिए, जिनका सचमुच हमारे जानने न जानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। कृष्ण यहां दूसरे टाइप के जानने लायक चीजों के बारे में बात करते हैं, जो हमारी भारतीय परंपरा का ट्रेडिशन के अनुसार है। वो एक वो जानने लायक चीज है, उसकी डेफिनेशन है, जिसको जानने के बाद और कुछ जानने लायक बचे ही नहीं है। सा विद्या या विमुक्तये उपनिषद कहती है, और उसी का ये शैडो है, उसी की छाया है कि ऐसा चीज ज्ञान तुम्हें जानना है जिसको जानने के बाद तुम्हें अमृत की प्राप्ति होगी। अमृत तो किसी को भी नहीं प्राप्त होगा, क्योंकि जो भी पैदा हुआ है उसको मरना पक्का है, पर इतना श्योर हो सकता है कि दोबारा वो नहीं मरेगा, एक ही बार मरेगा, अब उसके बाद बार बार नहीं मरेगा, क्योंकि मरने के लिए पैदा होना पड़ता है। और अगर कोई मरना नहीं चाहता है तो एक ही उपाय है कि वो उसको पैदा होना बंद कर दिया जाए। पैदा होना बंद करने के लिए एक ही उपाय है कि उसकी जो संस्कार है, जो फ्लो ऑफ संस्कार है, उसको रोक दिया जाए। वो तब रुकता है जब हमें समझ में आता है कि सचमुच मैं क्या हूं, दुनिया क्या है, मेरा जो बनावट है, जो मेरी प्रोसेस ऑफ मेकिंग है, वो क्या चीज है। जिस दिन मैं समझ जाऊं तो फिर उसके बाद जो कुछ मैं करूंगा वो मेरे लिए फिर आगे मुश्किल पैदा नहीं करेगा। जब आपके काम आपके लिए मुश्किल पैदा नहीं करते हैं, आपके अच्छे काम भी बुरे काम भी दोनों, तो फिर आगे की रास्ता साफ होता है। आपको दोबारा शरीर लेकर के पैदा होने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि आप पैदा ही नहीं होंगे तो मरेंगे नहीं, तो अब अमृत ही हुए, अमर हुए। वो जो चीज मैं तुम्हें बताने वाला हूं, कृष्ण कहते हैं, वो अनादि मत है, जिसका कोई आदि नहीं है, जिसका कोई बिगिनिंग नहीं है, और बिगिनिंग उसी का नहीं होता है जिसका कोई एंड नहीं होता है। हम सबका कोई ना कोई स्टार्टिंग पॉइंट है, कभी ना कभी पैदा हुए हैं, और इसीलिए हम सबका मरने का भी एक पॉइंट फिक्स है, वो हमें पता हो ना हो। ये सिर्फ मैं और आप नहीं है, दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, सूरज है, चांद है, आकाश है, सोलर सिस्टम है, धरती है, माउंटेन से, ओशियन से, कुछ भी है, फॉरेस्ट जंगल है, कुछ भी है, जिसका कोई ना कोई बिगिनिंग पॉइंट, पॉइंट ऑफ स्टार्टिंग है, उसका भी पॉइंट ऑफ एंडिंग होगा। और जब आप कहते हैं कोई चीज जिसका कोई शुरुआत नहीं है, इसका मतलब है कि उसका कोई आखिर नहीं है। हमेशा ध्यान रखिए, जितना अपोजिट चीजें आपको दिखे वो एक्चुअली एक दूसरे को सप्लीमेंट करने वाले होते हैं, वो एक्चुअली एक दूसरे के लिए पूरक होते हैं, सप्लीमेंट करते हैं। दे आर एक्चुअली नॉट अपोजिट टू ईच अदर, दे आर कंप्लीमेंटिंग ईच अदर। जितना भी चीजें आपको उल्टा दिखे, दिन और रात है ना, ऊंचाई और गहराई है, सुख और दुख है, अच्छा और बुरा है, कोई भी चीज जहां भी है उसके साथ में उसका अपोजिट साथ जुड़ा होगा। आपकी फैमिली अपोजिट अपोजिट के अलावा चल ही नहीं सकता। एक पुरुष चाहिए, एक स्त्री चाहिए, एक दूसरे के अपोजिट है, तभी आपकी फैमिली चलती है। ये संसार बना ही ऐसे ही है। आप खुद एक कॉम्बिनेशन ऑफ टू अपोजिट चीज थिंग्स हैं। एक बॉडी है जो मैटर है, और बिल्कुल उल्टा है आत्मा से, सोल से, जो कॉन्शियसनेस से, जिसके बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है, दूर दूर का कोई सिमिलरिटीज नहीं है, पर ये दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, तभी आप होते हैं, मैं होता हूं। ये दुनिया की एक वंडरफुल चीज है, बड़ा आश्चर्य की चीज है कि दो जिसको हम विपरीत समझते हैं, एक दूसरे को कंट्रडिक्ट करने वाले समझते हैं, एक दूसरे से अपोजिट समझते हैं, एक्चुअली वही दोनों ही एक दूसरे के लिए बने होते हैं। कभी भी दिन नहीं हो सकता अगर अंधेरा ना हो। क्यों? जिस व्यक्ति जीवन में कभी अंधेरा देखा ही नहीं है, वो समझ नहीं सकता दिन क्या होता है। दिन क्या होता है समझने के लिए आपको अंधेरा जरूरी है। अंधेरा को जानने के लिए दीन का नॉलेज होना भी जरूरी है। जिसने भूखा रहा नहीं उसको कभी नहीं पता चलेगा कि खाने का मजा क्या होता है। अगर हमेशा आपका पेट भरा रहता है तो आप कभी भी खाने का मजा नहीं ले सकते। भारत में ज्यादातर जो इंडियन पेरेंट्स हैं, जो इंडिया से आए हुए हैं, यंग पेरेंट्स हैं, और भारत में भी आप यही समस्या है, खास करके जो मिडिल क्लास या उससे ऊपर के पेरेंट्स हैं, उनके बच्चे खाना नहीं खाते, उनको फोर्सफुली खिलाना पड़ता है। किसी गरीब घर के बच्चे को देखो, पूछ के देखो खाना खाता है कि नहीं खाता है, दौड़ दौड़ के खाता है। ये अमेरिका के पेरेंट्स के भी बच्चे खाते हैं, क्यों पता है? क्योंकि इनकी ट्रेनिंग है, बच्चा ना खाए तो खाना मत दो, जब भूख लगेगा अपने आप खाना लगेगा, दो चार दिन करो अपने आप खाएगा। हमारा क्या है, बच्चा खाया नहीं है, चार रोटी खाना चाहिए, दो रोटी खाया, दो रोटी और घुसा के खिलाते हैं, पेट भरा नहीं कि चार बजे फिर दूध एक गिलास जबरदस्ती पिला तो उसका पेट कभी खाली होता ही नहीं है, तो क्या खाएगा बेचारा। एक दिन भूखा छोड़ दो, अगले दिन पीछे पड़ पड़ के खाएगा, पर क्या करेंगे। पूरी इंडियन मिडिल क्लास यंग पेरेंट्स की बीमारी है, हमारे घर में भी है और आपके घर में भी होंगे। ये बच्चे खाते नहीं है, कैसे खाएंगे, छोड़ दो खाएंगे अपने आप, घूम घूम के खाएंगे। एक बार उनको एहसास होने दो कि भूख क्या चीज होता है, एक दिन भूखा छोड़ दो। पर नहीं, पैसा कमाते किसी लिए, बच्चों के लिए ना, नहीं खाएंगे तो दुख होता है, तो फिर जिंदगी भर खिलाते रहो। 18-18 साल तक लड़कों को हम खिलाते रहते स्पून पकड़ा के, क्योंकि उनको कभी पता ही नहीं होता है भूख का दर्द क्या होता है, कभी नहीं समझ पाएगा। एक फ्रांस के एक पुराने राष्ट्रपति थे पहले जमाने की, उनको किसी ने कहा, उनके मिनिस्टरों ने कहा कि अफ्रीका में बहुत गरीबी है, अकाल पड़ा है, हमें चैरिटी भेजनी है। बोले क्या ये भूखमरी क्या होती है, ना इनको खाना नहीं मिलता है, तो खाना नहीं मिलता जी, रोटी नहीं मिलती है, तो रोटी नहीं मिलती है तो उनको ब्रेड दो, केक दो। भाई जो रोटी नहीं मिलती है तो ब्रेड केक कहां से खाएंगे, क्योंकि जिस आदमी ने कभी देखा ही नहीं गरीबी भूखमरी, उसको कैसे पता चलेगा। तो कभी आप खाने का आनंद लेना चाहते हैं तो कभी आधा दिन भूखा रहकर देखिए, आपको पता चलेगा। जो रोज रोज टुका टुकी करते हैं, ये बेकार बना ये बेकार बना, कभी भूखा खाकर देखिए, वो बिना नमक वाला खाना भी कितना स्वाद आने लगेगा। दिन हो रात हो, सुख हो दुख हो, जिसने दुख को नहीं देखा उसको सुख कभी समझ में नहीं आएगा। इसलिए हमारे पुराणों में कहानियां होती है कि देवता लोग बार बार आ जाते हैं इस धरती पर, पुराण की कहानियां होती है, नरेशन होती है, इंसान बनने के लिए आते हैं। क्यों? मजा लेना होता है। स्वर्ग में क्या है ना, कोई बुढ़ा बनता नहीं कभी, है ना, वहां कोई बीमारी नहीं होती है, हमेशा स्प्रिंग सीजन रहता है, कभी गर्मी नहीं होती है, कभी ठंडी नहीं होती है, कभी बारिश नहीं होती है। वहां हर चीज मांगने पर मांगना भी नहीं पड़ता है, सोचने मात्र से मिल जाता है। कल्प वृक्ष है, बस आपको सोचने की जरूरत है, आपके सामने थालियां लग जाती है, तो उग चुके होते हैं। तो बीच बीच में क्या करते हैं, फिर वो इंसान जन्म लेकर आते हैं, फिर उनको मजा आता है, फिर आते हैं तो फिर जाने की इच्छा नहीं करते हैं, क्योंकि सुख का आनंद तो दुख में ना। ये जो पुराणों में जो कहानियां है उसका मतलब यही है। अब पता नहीं आप इसको देवता समझ के बैठ दे और देवता सचमुच अवतार लेने आ गए, ये तो आपकी बुद्धि पर डिपेंड करता है।
पर इस कहानी का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर आप हमेशा सुख में रहते हो, जो सोचते हो कि मैं हमेशा जवान रहूं, हमेशा सुख में रहूं, ये कोई अच्छा डिसीजन नहीं है। फिर आप कहीं उसका सुख नहीं ले पाओगे, क्योंकि आपका हर चीज बदलता है, इसीलिए आप इसको एंजॉय कर पाते हो। जब आप गर्मी में होते हो, बहुत ज्यादा गर्मी में, तो सोचते हो कब ठंड आए, जब बहुत ठंड हो जाता है सोचते हो कब गर्मी आए। तो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो ईश्वर अगर अनादि है तो अनंत भी है, परम ब्रह्म है, वो सत भी नहीं है असत भी नहीं है। जब आप कोई चीज कहते हो नहीं है तो ये भी मुश्किल होता है कहना है। वो सत एग्जिस्टेंस उसका नहीं है, इसलिए कहना पड़ता है, क्योंकि जो लोग कहते हैं वो है वो कभी प्रूफ नहीं कर पाते। आप सब पूछते रहते हो, अगर है तो बताओ कैसे देखें, प्रूफ करो। आप प्रूफ करने का मतलब आपके लिए मेरे लिए क्या है, आंखों से दिखवाओ, आंख से देखना दिखाओ हमें, नहीं तो सुनवाओ, उसकी आवाज सुनवाओ, नहीं तो कोई स्मेल करवाओ, छू कर दिखाओ, चक्कर के दिखाओ, कुछ नहीं तो फिर हम कैसे माने। पर प्रॉब्लम है दुनिया में तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको आप छू नहीं सकते, देख नहीं सकते हो, चक नहीं सकते हो, पर कोई ना कोई इंद्रिय तो आप हवा को देख नहीं सकते पर आप छू सकते हो। आप स्पेस को छू नहीं सकते हो, देख नहीं सकते हो, सुन नहीं सकते हो, पर आप फील कर सकते हो जब कहीं एम्प्टी प्लेस हो, कोई खाली जगह हो। कोई ना कोई इंद्रिय काम करता है किसी चीज को जानने के लिए, पर जो इंद्रियों से परे हो फिर कैसे उसको जानोगे। इसीलिए हमें लगता है कि वो नहीं है। बहुत सारे दुनिया के लोगों के लिए वो एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि हम अपने सेंसेस के द्वारा उसको पा नहीं पाते हैं। पर इसका अर्थ नहीं है कि वो असत है, वो नहीं है, क्योंकि अगर नहीं होता तो पेड़ों में हरियाली किस कहां से आई, ये पहाड़ ऊंचे क्यों बने, सागर गहरा क्यों बने, आपकी इंसान की बॉडी ऐसी क्यों बनी, सूरज क्यों ऐसा बना, चांद क्यों ऐसी बनी, ये क्यों आकाश में लटके हुए हैं, कौन डिसाइड करता है कहां से बने। कोई मैटर में थोड़े इतने इंटेलेक्ट होता है कि वो सब डिसाइड करे कि सब इतने हार्मोनी के साथ, इतने इतने यूनिवर्सियल लॉ के साथ, बिल्कुल परफेक्ट रूल रेगुलेशन के साथ पूरा यूनिवर्स चलता है। इंसान के रूल्स को तो हम तोड़ते हैं, तोड़ सकते हैं, पर नेचर की लॉ को आप कभी नहीं बदल सकते। और जब भी आप बदलने की कोशिश करते तो हमारे साथ बीमारियां आती है। देखिए, हम लाइफस्टाइल चेंज कर दिया, खाना पीना जबरदस्ती चेंज किया तो बीमारियां आने लगी। हमने इकोसिस्टम को छेड़ा, जबरदस्ती यूज किया, एक्सप्लोइट किया, लाखों साल की धरती सिर्फ 400 साल में रहने लायक नहीं रही। 16th सेंचुरी में ये साइंटिफिक रिवोल्यूशन शुरू हुआ। साइंटिफिक रिवोल्यूशन मतलब द टूल्स टू एक्सप्लोइट द अर्थ, इस धरती को चूसने के लिए, एक्सप्लोइट करने के लिए जो कुछ चीजें किया जा सकता है उसी को हमने साइंस और टेक्नोलॉजी का नाम दिया। और उसका रिजल्ट क्या हुआ, सिर्फ 400 साल हुए और पूरी दुनिया परेशान है, फिर रोको, दोबारा रोको, ये डीजल रोको, इसको रोको, गैस रोको, एसी रोको, क्योंकि आगे 200-300 साल के बाद हमारे जनरेशन के लिए सांस लेने के लिए हवा भी नहीं मिलने वाला, धरती में दुनिया तरह के समस्याएं आने लगी। जब भी आप नेचर को छेड़ते हो, उस यूनिवर्सियल लॉ को डिसओबे करते हो, तो उसकी पनिशमेंट बड़ी खतरनाक होती है। तो कोई ना कोई सिस्टम है, अगर कोई सिस्टम है, इतना परफेक्ट सिस्टम है, उस सिस्टम को बनाने वाला भी कोई इतना ही परफेक्ट होगा, तो आप अवॉइड नहीं कर सकते हो। आस्तिक कहता है कि ईश्वर है, जो ईश्वर को मानते हैं, इसी ये सबसे बड़ा डाउटफुल चीज है कि ईश्वर को मानने वाले कौन है। मुझे तो वो लोग ज्यादा बेटर लगते हैं जो ईश्वर को नहीं मानते हैं, कम से कम उनमें हिपोक्रेसी नहीं होती है। ईश्वर को मानने वालों में तो ज्यादा हिपोक्रेसी दिखती है, क्योंकि दिल में उनकी ईश्वर होने की बहुत कम आस्था है, तभी तो इधर उधर मुंह मारते फिरते हैं, ये भगवान ये भगवान ये भगवान ये भगवान, मंदिर मस्जिद कुछ भी नहीं छोड़ते हैं, पता नहीं किस रूप में कहां आ जाए, पर दिल में वो डर अभी भी होता है, पता नहीं होता है कि नहीं होता है। नास्तिक कहता ईश्वर नहीं है, आस्तिक कहता ईश्वर है, ये दोनों दावा, ये दोनों जो दावा किया जाता है वो दोनों ही फॉल्स होते हैं, दोनों एम्प्टी होता है, खोखला होता है। जो एथिस्ट है, जो दावा करता है ईश्वर नहीं है, उसको कैसे पता चला ईश्वर नहीं है? उसकी बिलीव है, उसकी अपनी सोच है कि नहीं है, मैं नहीं मानता। बिल्कुल वैसे ही जो व्यक्ति कहता है ईश्वर है, तुम्हें कैसे पता चला ईश्वर है? तो दोनों खोक, इसीलिए लड़ाइयां होती है, क्योंकि किसी को कुछ पता नहीं होता, इसलिए लड़ाइयां होती है, क्योंकि वो अनडिस्क्राइबल है। वो अनडिस्क्राइबल इसीलिए इट्स द ट्रांसेंड ऑफ सेंसेस, वो इंद्रियों से परे है। बीज में पेड़ है कि नहीं है, बच्चे को पूछो, बच्चा कहेगा नहीं है। आप तो समझदार हो, आप पढ़े लिखे हो, आप जानते हो, तो आप कहोगे नहीं है, पर वो कहेगा फिर दिखाओ। तो बीज लाएगा, बीज मतलब सीड को, उसको तोड़ेगा, फड़ेगा, दिखाओ, बोले दिखाओ कहां पर पेड़ है, इसके अंदर तो कुछ है, वो खाने लायक है, उसको खा भी लेते हैं लोग। आपको सिर्फ एक ही तरीका दिखाने के लिए कि बीज को स्प्राउट बनाओ, उसके लिए सही एटमॉस्फेयर क्रिएट करो, चार पांच दिन में उसमें से पेड़ निकलने लगेगा, आप बताओगे देखो पेड़ है, था। तो अगर था, बच्चा पूछेगा, तो फिर उस दिन क्यों नहीं दिखा? वो अनमैनिफेस्टेड फॉर्म में था, आज वो मैनिफेस्टेड फॉर्म में है। पर ये तो वही बता पाएगा ना जिसको पता है, पर ईश्वर के बारे में यही पता तो मुश्किल है। इसीलिए वो इंसान के लिए सत भी है, सत मतलब एग्जिस्टेंट भी है, नॉन एग्जिस्टेंट भी है। मेरे साथ बोलिए, सर्वत पाणिपादम तत्, सर्वतोक्षि शिरोमुखम, सर्वत श्रुतिमत् लोके, सर्वमावृत्य तिष्ठति, सर्वत पाणिपादम तत्, सर्वतोक्षि शिरोमुखम, सर्वत श्रुतिमल्लोके, सर्वमावृत्य तिष्ठति। जिसके बारे में मैं बताने जा रहा हूं, मतलब कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, उसके पाणि हाथ पादप पैर चारों तरफ हर तरफ से, उसकी आंखों चारों तरफ हर तरफ है, उसके सर भी हर तरफ है, उसके मुंह भी हर तरफ है, वो हर तरह से सुनता है, सबको सबको ढक करके, सबको परवेट करके, सबको छाया, सबको इन्वॉल्व करके वो बना रहता है। ऋग्वेद में मंत्र आता है, सहस्र शीर्षा पुरुषाः सहस्राक्षः सहस्रपात् सभूमिं सर्वतो वृत्त्वा त्यतिष्ठत् दशांगुलम्। उसी मंत्र की एक छाया है, एक शैडो है गीता में। याद रखिए, गीता बेसिकली वेद और उपनिषदों के बहुत सारे चीजों को का कलेक्शन एक दूसरी भाषा में, हजारों सर वाला, हजारों मुंह वाला, हजारों पैर वाला, यहां उसको कहा कि हर तरह के हाथ पैर वाला। जहां तक तुम जा सकते हो वहां तक वो तुम्हें दिखेगा। तुम जहां भी छुप सकते हो, जहां कोई भी नहीं है, अकेले में काम करते हो और कोई देखे ना देखे, ईश्वर देखता है। जो कर्म फल की व्यवस्था है, उस व्यवस्था में ज्यादातर हम हमारे बारे में, जब खुद के बारे में सोचते हैं, हम उसी कर्म को कर्म मानते हैं जो हमने पब्लिक में किया, और सोचते हैं कि हमने तो कभी ऐसा बुरा नहीं किया, पर हमारे साथ बुरा क्यों हुआ, हमने तो कभी अच्छा नहीं किया, हमारे साथ अच्छा क्यों हुआ, पर हम भूल जाते हैं बहुत सारे चीजें हम करते हैं जो कोई नहीं देखता है, उसके बावजूद भी कोई ना कोई आपको नोट करता है। जहां कोई भी नहीं होता है वहां ईश्वर की सत्ता होती है। तो आप संसार से छुप सकते हो, इसलिए ऐसा कोई जगह नहीं जहां आप छुप सकते हो। बुरा काम या अच्छा काम आप छुप के कर सकते हो, वो सब कम से कम आपके, इसीलिए ईश्वर का दूसरा नाम होता है अंतर्यामी। यामी मतलब मूव करने वाला, जो आपके अंदर में भी मूव करता है। आप बाहर के लोगों को तो छुपा सकते हो, आपके अपने फीलिंग को कैसे छुपाओगे? आप किसी को जिंदगी में थप्पड़ नहीं मारा, पर आपके अंदर साल में कम से कम 50 बार 100 बार विचार आया कितने लोगों को मारने की, सीधा खून करने की विचार आया है। मौका मिले तो खून कर डालो, क्या करो, सरकार है, कानून है, सिस्टम है, पुलिस है, अपना रेपुटेशन है, अपनी सोशल स्टेटस है, ये कर नहीं पाता हूं, नहीं तो मौका मिले तो छोड़ूंगा नहीं। मन में कितने लोगों को हम मार चुके होते हैं, कोई नहीं जानता, आपकी पत्नी आपके पति भी नहीं जानते हैं, दूसरे तो छोड़िए, ये सिर्फ आपके मन में है। पर ये नोट हो चुका होता है, आपको पता चले न चले। एक बड़ी सुंदर कहानी हमने सुनी है कि किसी गांव में एक मंदिर के एक पुजारी थे, और उस मंदिर के थोड़े दूर के बाद, बड़ी पुरानी कहानी है, एक गणिका थी, नाचने गाने वाली गणिका थी, और पिछले जमाने में जो गणिका नाचने गाने वाली होती है उनको अच्छी नजर से नहीं देखी जाती थी, और वो उसके साथ भी जो प्रोस्टिट्यूशन के साथ भी जुड़े हुए रहती थी, उनको गणिका कहते थे पिछले जमाने में, जैसे मुगलों के समय में मुजरा वगैरह करते थे। तो ऐसे ही एक घर था, तो दोनों कहते एक दिन मर गए, तो यमराज के दूत दोनों को ले गया चित्रगुप्त के पास। दोनों पहुंचे तो दूतों ने पूछा, बताइए इनको कहां भेजें? तो चित्रगुप्त ने बोला, ये पुजारी को तो नरक भेज दो, ये जो गणिका है इसको स्वर्ग भेज दो। गणिका को कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, अल्दो उसको पता है कि मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं, मुझे क्यों स्वर्ग भेजा, पर क्या फर्क पड़ता है। पर पुजारी को कंप्लेन था, तो उसने कंप्लेन दर्ज कराया, ऐसा क्या हुआ, चलो मुझे नर्क भेजा वो मैं देख लूंगा, पर मुझे तो पता है ये गणिका है, सारा गंदा काम करती है, आप किसे कभी जिंदगी में मंदिर नहीं गई, पूजा पाठ नहीं की, भगवान का नाम नहीं लिया, कुछ भी नहीं किया, ये कैसे स्वर्ग चली गई? क्योंकि हमारे यहां तो स्वर्ग वही जाते हैं ना जो मंदिर जाते हैं, है ना, ये हमारे यहां नहीं सब जगह है, जब तक आप उसको ना मानो तब तक आप हेवन में आपका जगह रिजर्व नहीं होता है, तो हेल में जाओगे। हमारे यहां है कि जब तक आप गंगा में डुबकी ना लगाओ, ये मत करो, तब तक आप नहीं जा सकते हो, कितना भी अच्छा काम करो बुरा काम करो उसको कोई नहीं काउंट करता। तो चित्रगुप्त ने बोला, अगर ज्यादा देखना है तो देखो, पूरी लिस्ट मेरे पास है, पोथा है, तुम्हें पता होता है नहीं पता है, हमारे पास तो एक एक दिन एक एक मोमेंट की लिस्ट होती है। ये गणिका है, क्योंकि उन दिनों ये सब खानदानी होती थी, हेरिडेटरी, जिसको जैसे कुमार है तो उसका बेटा भी कुमार बनता था, तो जो गणिका है उसकी बेटी भी गणिका बनती थी, तो खानदानी प्रोफेशन के कारण तो वो गणिका बनी। शाम को नाच गीत होता था, पर जब भी मंदिर में घंटी बजती थी, आरती होती थी, पूजा होती थी, मंत्र पाठ होते थे, यज्ञ होता था, उसका मन करता था, काश मैं भी एक आम औरत होती तो मैं मंदिर जाती, वो नाचती थी, गाती थी, लोगों का मनोरंजन करती थी, लोगों के दिल बहलाती थी, पर मन में हमेशा सोचती थी काश मैं भी भगवान के साथ होती, मुझे भी मौका मिलता। पुजारी जी महाराज रोज शाम को घंटी बजाते थे, आरती करते थे, पर मन में होता था काश मैं आम आदमी होता, मैं उधर जाता, मैं भी वहां जाता, वहां भी एंजॉय करता। और क्या करूं, पुजारी बना हूं, घंटी बजाना पड़ता है। बताओ कौन से शाम को तुमने भगवान का सचमुच दिल से याद किया हो? पंडित जी घबराया, मेरी मन की बात इनको पता है, ऊपर की बात कुछ नहीं याद रखा। बोले यहां ऊपर की बात तो इंसान देखते हैं, यहां तो सिर्फ अंदर की बातें देखी जाती है। तुम क्या करते हो वो तुम्हारे पड़ोसी के लिए मतलब रखता होगा, हमारे लिए मतलब है कि वो करने के पीछे तुम क्या सोचते हो। इसीलिए उस ये कहानी का अर्थ सिंपल इतना ही है कि ईश्वर सब जगह है, उसकी सिस्टम हर जगह काम करता है, तुम्हारे अंदर के हर कोने कोने में भी काम करता है। वो सबके अंदर है, सबके बाहर है, उसको हम जान नहीं पाते, क्योंकि मछली को कभी पता नहीं होता है कि वो पानी में रहता है। एक मछली एक दिन आई, दूसरी मछली से कहा कि आपको पता है कि मैं एक दिन किनारे किनारे तैर रही थी, मुझे कुछ लोगों के बातचीत सुनाई दी कि पानी नाम की कोई चीज होती है, उसको पीते हैं, उसके पिए बिना जिंदा नहीं रह सकते लोग, पर हमें तो कभी पानी पीने की जरूरत पड़ी नहीं है, हमने तो कभी पानी देखा नहीं, वो क्या चीज होती है। दूसरे मछलियों ने बोला पता नहीं कुछ होता होगा बाहर, इंसान वगैरह होते हैं, कुछ होता होगा। तो सब मछलियों को पता है कि पानी कुछ चीज होती है जो हमें पता नहीं है। एक दिन एक मछली किसी कारण छलांग लगाकर गलती से ऊपर आ गया, पानी से बाहर आ गया, एक मिनट में तड़प तड़प के उसकी जान निकलने लगी, फिर किसी तरह मुश्किल से जैसे ही वो समुंदर में गया उसकी सांस आई, वो पानी पी गया। बोला मुझे पता चला है पानी क्या है, ये जो हम रहते हैं ना जिसके अंदर वही पानी है, हमें पता ही नहीं चलता क्योंकि 24 घंटे हम इसी के अंदर रहते, और हमारे लिए पानी के बाहर तो कुछ होता ही नहीं क्योंकि हम पानी के बाहर, मैं गया था। पर प्रॉब्लम है मछलियों के लिए तो चांस है पानी से बाहर आ जाएं और देख ले कि ये पानी है, दो मिनट तरस जाएं पानी के लिए, फिर पता चलेगा कि समुंदर में जो है जिसमें वो रहते वही पानी है, उसी के बिना जी नहीं सकते, उसी को पीते हैं। पर हमारी समस्या है कि हम ईश्वर से बाहर जाए तो कहां जाएंगे, ऐसा कौन सा जगह है कि आप ईश्वर से छलांग लगाओगे और ऐसी कोई जगह मिल जाएगा जहां कुछ भी नहीं तो वहां भी वही है, क्योंकि हम उससे बाहर जा नहीं सकते, इसलिए दूर से हम उसको देख नहीं सकते, क्योंकि उसी के अंदर हम रहते हैं, इसलिए कभी पता ही नहीं चलता है कि इसके अंदर हम रहते हैं या ये हमारे अंदर रहता है। सब जगह होने पर भी हम उसको समझ नहीं पाते हैं। अगले श्लोक हम अगले बार की चर्चा के लिए रखेंगे, आज के लिए यहीं विराम देते हैं। ओम शांति शांति।